ग्रंथ श्री समता विलास का एक अंत में चैप्टर है आत्मचिंतन, उसका वचन नंबर 10 आपके सामने पढ़ा जा रहा है। इस पर विचार होगा। आत्मपरायण होकर नित ही शुद्ध वासना द्वारा सत कर्तव्य को धारण करना ही श्रेष्ठ आचरण है। आत्मपरायण होकर नित ही शुद्ध वासना द्वारा शुद्ध कर्तव्य को धारण करना ही श्रेष्ठ आचरण है। यानी एक आत्मा के परायण होकर के तमाम शारीरिक क्रिया को खेद स्वरूप और छिन्न भंगुर जानते हुए अधिक लोभ, अधिक मोह, अधिक क्रोध, अधिक काम और अधिक अहंकार के वेग को नित्य पवित्र करने का यत्न करना ही असली मानुषपन है और सतवादी जीवन का लक्ष्य है। ऐसा पवित्र निश्चय और पवित्र निधिध्यासन ही आत्मचिंतन में निहचल करता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आत्मपरायण होकर नित्य ही शुद्ध वासना द्वारा शुद्ध कर्तव्य को धारण करना ही श्रेष्ठ आचरण है। तो ये आत्मपरायण होना ये क्या है? ये यदि इसको एक उदाहरण से समझें तो ये बात आसानी से समझ में आ सकती है। जैसे कि एक विद्यार्थी है, उसने इंटरमीडिएट अपना एग्जाम पास किया, पास करते करते साथ में वो संसार को भी देखता रहा, समाज को भी देखता रहा और उसके अंदर एक इच्छा पैदा हुई, एक वासना पैदा हुई कि मैंने इंजीनियर बनना है। उसके लिए उसने मेहनत की, जो कुछ भी कर सकता था उसने करने की कोशिश की और उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया। अब जब एडमिशन मिल गया, आप विचार करो, यदि किसी विद्यार्थी ने पूरी मेहनत करके, पूरी लगन से, पूरी कोशिश करके ये सफलता प्राप्त की कि उसका इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया, ऐसे विद्यार्थी का जिसके अंदर एक लालसा है कि कम से कम मेरी कोई पोजीशन आनी चाहिए, पहली आ जाए, दूसरी आ जाए, तीसरी आ जाए, खाली इंजीनियर ही नहीं बनना, मैंने एक अच्छा इंजीनियर बनना है, एक सफल इंजीनियर बनना है। तो अब विचार करो कि वो जो स्टूडेंट है जिसका लक्ष्य इंजीनियर बनना है तो उसकी मानसिक हालत क्या होगी? वो लगातार यही सोचता रहेगा कि मैं क्या करूं, कैसे पढ़ाई करूं, कैसे दैनिक जीवन जीऊं कि मैं इंजीनियर्स में भी श्रेष्ठ इंजीनियर बन जाऊं। तो आप देखते हैं कि उसके अंदर एक ही वासना बचती है कि मैंने एक श्रेष्ठ, एक सफल इंजीनियर बनना है। ये ईश्वर आत्मपरायणता भी ठीक इसी प्रकार की। जिस मनुष्य की बुद्धि में अध्यात्म पढ़ते पढ़ते, सद्विचार करते करते ये अंदर इच्छा जागृत हो जाती है कि मैंने ईश्वर का साक्षात्कार करना है, तो अब बताइए जिसके अंदर ऐसी इच्छा पैदा हो गई, ये कौन सी इच्छा है? इसी को ये वचन कह रहा है कि आत्मपरायण होकर नित ही शुद्ध वासना द्वारा शुद्ध कर्तव्य को धारण करना ही श्रेष्ठ आचरण है। अब विचार करो उसके अंदर कौन सी शुद्ध वासना होगी? वासना तो इम्प्योर ही होती है, लेकिन यहां गुरुदेव क्या लिख रहे हैं कि शुद्ध वासना द्वारा। तो ये शुद्ध वासना कैसी है? जो परम शुद्ध सृष्टि में कोई चीज है उसी का नाम ईश्वर, उसी का नाम आत्मा है, उसी का नाम परमेश्वर। तो जिस मनुष्य की बुद्धि में यह निर्णय स्पष्ट हो गया, उसका लक्ष्य बन गया कि मैंने ईश्वर प्राप्ति करनी है, इसके लिए मैंने जीवन जीना है, तब ये महाराज जी उस शुद्ध वासना की बात कर रहे हैं कि आत्मपरायण होकर नित ही शुद्ध वासना द्वारा शुद्ध कर्तव्य को धारण करना ही श्रेष्ठ आचरण है। अब बताइए वो क्या कर्तव्य पालन करेगा संसार में? जिस प्रकार वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट अपना वक्त है, सोने का वक्त भी कम कर देता है, खेलने का वक्त भी कम कर देता है, संसार के भोग भोगने का भी वक्त कम कर देता है, एक ही डिजायर बसती है उसके अंदर, एक ही शुद्ध वासना बसती है कि मैंने सफल इंजीनियर बनना है, तो उसकी वे ऑफ लाइफ क्या होगी, उसका जीवन जीने का तरीका क्या होगा, ये कल्पना आप कर सकते हैं। ये कोई कठिन चीज नहीं। जो होशियार स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे मिलते हैं आप, कोई फिक्र ही नहीं है, एक ही लगन है कि मैंने एक सफल इंजीनियर बनना। तो जो सतमार्ग का राही है, जो ईश्वर मार्ग में सिंसियर है, जिसकी बुद्धि जो है ये कन्विंस हो चुकी है पूरी तरह से, कि जैसे कि अभी वाणी का पाठ कर रहे थे, वाणी का श्रवण कर रहे थे, तो वो क्या है, यही तो बात कह रही थी वाणी कि मनुष्य जन्म लेकर इस बुद्धि का मैंने क्या उपयोग करना था, कि संसारी कर्म करते हुए कितने दुख हैं, कितने मानसिक क्लेश हैं, और सफलता कहां है इसकी, मौत इसकी सफलता। पूरा मानव जन्म आपने व्यतीत कर दिया, मौत आपका जो रिजल्ट है जीवन का वो आपके हाथ आई, और साथ में क्या लेकर गए, संसारी संस्कार लेकर आप संसार से विदा हो गए। तो ये जन्म भी बर्बाद किया आपने, अगला जन्म भी बर्बाद करोगे, क्योंकि मनुष्य की मौत है नहीं, देह की मौत है। मनुष्य कहते हैं जीव, जो मानव या जो जीव इस देह में निवास कर रहा है, जो सुख दुख भोग रहा है, जो जान रहा है, जो समझ रहा है, वो मैं हूं ना, देह नहीं समझती कुछ भी, देह तो जड़ है। इसीलिए मैं जो मेरी देह इक्विपमेंट है उसको मैं अपना स्वरूप समझता रहा सारी जिंदगी, और इसी शरीर को अपने आप को शरीर समझने का मैं अहंकार बढ़ाता रहा अपना, पांचों विकार अपने बढ़ाता रहा, और संसार में सुखी जीवन व्यतीत कर पाऊं, संसार में सफल जीवन व्यतीत कर पाऊं, तो मैंने जो पांच विकार का जीवन था उसको मैंने सफल जीवन समझ लिया, उसमें सारा जन्म ने उसकी बाजी लगा दी। लेकिन जो जिसके पास सतबुद्धि है वो ऐसा नहीं सोचता। सत्पुरुष का जो मार्गदर्शन है उस पर वो ध्यान देता है, सतविचार पर ध्यान देता है, तब उसका गोल बन जाता है कि मैंने ईश्वर परायण होकर शुद्ध वासना द्वारा शुद्ध कर्तव्य को धारण करना है। तो कह रहे हैं ये श्रेष्ठ आचरण है। मानव जन्म लेकर श्रेष्ठ आचरण किसको कहेंगे? मैं झूठ नहीं बोलता हूं, किसी को दुख नहीं देता हूं, ये आचरण का आधार नहीं है, ये बातें अच्छी हैं, ये तो करना ही चाहिए। लेकिन मानव जन्म लेकर जो मानव का शरीर मिला है वो एक लक्ष्य प्राप्ति के लिए मिला है। जो दुख हम भोग रहे हैं इंद्रियों के द्वारा, कर्म के द्वारा, उससे परमानेंट मुक्ति के लिए मिला है। इसीलिए मानव जन्म लेकर यदि मेरा स्वाध्याय ऐसा नहीं हुआ, मेरा सत्संग ऐसा नहीं हुआ, मेरी संगत ऐसी नहीं हुई जो मुझको ये सिखा दे कि मानव जन्म तो ईश्वर को जानने के लिए मिला है, जो तेरी देह के अंदर खुद मौजूद है, तो तेरी बुद्धि में उसकी प्राप्ति की वासना होनी चाहिए या उसकी प्राप्ति की इच्छा होनी चाहिए। तो महाजी शुद्ध वासना के द्वारा ये कह रहे हैं, तो आत्मपरायण होकर नित ही शुद्ध वासना द्वारा शुद्ध कर्तव्य को धारण करना ही श्रेष्ठ आचरण है। यह है तेरे श्रेष्ठ आचरण की पहचान। आगे क्या कह रहे हैं, यानी एक आत्मा के परायण होकर के तमाम शारीरिक क्रिया को खेद स्वरूप और क्षण भंगुर जानते हुए अधिक लोभ, अधिक मोह, अधिक क्रोध, अधिक काम और अधिक अहंकार के वेग को नित पवित्र करने का यत्न करना ही असली मानुषपन है और सतवादी जीवन का लक्ष्य है। अब देखिए, हम संसार में सफलता चाहते हैं लेकिन गुरु क्या मार्गदर्शन कर रहा है? हमारे निर्णय के हमारे निश्चय के बिल्कुल विरुद्ध बात करता है। ईश्वर परायण जीवन, आत्मपरायण जीवन। तो बुद्धि का निर्णय जिसका ये हो गया कि जब आत्मा अमर है, ईश्वर अमर है और ये देह मर जाती है, तो मैं ईश्वर के लिए जीऊं या देह के लिए जीऊं। गुरु पर हमारी श्रद्धा है, महाराज जी पर हमारी श्रद्धा है, लेकिन महाराज जी ने कौन सा जीवन जिया? उनके बचपन से लेकर अंत तक का जीवन देख लीजिए ना, वो केवल ईश्वर के लिए जिए, उनका केवल आत्मपरायण जीवन था। खुद ही कह रहे थे एक दिन कि प्रेमी जब इनकी 3 वर्ष की आयु थी तब इनको उनको पूरा बोध था कि ईश्वर क्या है और संसार क्या है। तो संसार में तो वो संसारियों की तरह रहते रहे, लेकिन अंदर की यात्रा वो पूरी करते रहे। तो घर के पास ही जंगल है, सारी रात उनके जंगल में व्यतीत होती रही और दुनिया उनको एक बालक ही समझती रही। उनके साथी भी इनको नहीं पहचान पाए। तो आत्मपरायणता ये कितनी गहरी चीज है, इसकी गहराई तब पता लगती है जिसकी बुद्धि ये निर्णय कर लेती है कि वाणी देखो उस ईश्वर से आ रही है, गुरु की जो स्थिति है वो सिद्ध कर रही है कि ये ईश्वर में स्थित जीव है। तो गुरु के शरीर से भी क्या कर्म हो रहे हैं, क्या मार्गदर्शन हो रहा है। एक मानव जीवन हमको देखने को मिलता है, हमको सुनने को मिलता है, हमको पढ़ने को मिलता है, तब तो हमारे अंदर विश्वास आना चाहिए कि ईश्वर ही वास्तव में सकल जगत का करता है। नहीं तो वाणी जो है वो किसी मनुष्य की लिखी किताब नहीं है। जब मनुष्य की लिखी किताब ही नहीं है वाणी, तो मेरी श्रद्धा वाणी पर है, तो वाणी क्या सिद्ध कर रही है? कि वाणी यही सिद्ध कर रही है कि इस देह के अंदर सबसे कीमती चीज ईश्वर है, सबसे कीमती चीज आत्मा है। तो मनुष्य की जो बुद्धि है वो वही सत बुद्धि बन सकती है, वही अच्छा मनुष्य बन सकता है जो इस रहस्य को समझता है कि सारा ज्ञान जिस देह के अंदर से जब बाहर आ रहा है तो देह में जो स्थित परमेश्वर है मैंने उसके लिए जीना है। और मैं मन को पकड़ के बैठ जाता हूं क्योंकि मन में जो संस्कार हैं वो संसार के हैं, क्योंकि मन के अंदर जो संकल्प उठता है, जो इच्छा उठती है, जो डिजायर उठती है, आप क्या करते हो? इंद्रियों के द्वारा या शरीर के द्वारा उसको संसार में पूर्ण करते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिससे भी आप कन्विंस्ड। तो वो सारे के सारे संस्कार आपके संसारी संस्कार जो है मन में चले जाते हैं, और वो उसका कैटेगरी बता रहे हैं मां जी कि लोभ मोह क्रोध काम और अहंकार, सारी जितनी भी 100% डिजायर संसार की हैं आपकी, ये 5 विकार के अंतर्गत आती है। इसीलिए मानव जन्म लेकर इन 5 विकारों को धीरे धीरे कम करने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों कम करने की कोशिश करनी चाहिए? ताकि मन मेरा बाहर संसार की तरफ ना भागे। तो जिसके पास सतबुद्धि है वो क्या सोचता है? वो एक ही चीज सोचता है कि अंतर्यामी ईश्वर जो आनंद का सागर है, जिसके अंदर अमर जीवन है, जहां जीव को फिर मौत का दर्शन करना ही नहीं पड़ता, तो अमर लोक भी है, परम आनंद भी है, परम शांति भी है। ये तो महाजी की समाधि क्यों लगती फिर? अंदर जब परम शांति है ही नहीं, जंगल में बैठे हुए हैं, शरीर के बिल्कुल विरुद्ध वातावरण है वहां पर, सारी रात वो समाधि में। माँ ने यहां तक कह दिया एक दिन कि मंगत घर में कल को खाने के लिए कुछ भी नहीं। मां से केवल इतना ही तो कहा उन्होंने, मां कल होने तो दे, चले गए। सारी रात समाधि में रहे, सूर्योदय हुआ वहीं तरेल नदी में स्नान किया, तब उनको ध्यान आया कि मां ने कल कहा था कि खाने को घर में कुछ भी नहीं। वहां से जब घर आए तो सीधा मां सामने मिली उनको, एक ही बात कही उन्होंने, मां तो कह रही थी कि घर में खाने को कुछ भी नहीं है। हां बेटा, मैं पड़ोस से जो है वो छाछ मांग रही थी, खेत से साग तोड़ लाई, वही मैंने तैयार किया। मां वही ला, तो कटोरे में जब उन्होंने वो छाछ और साग का जो पदार्थ था उनके सामने रखा, तो एक दिन महाराज जी खुद अपने शिष्य से क्या कह रहे हैं, प्रेमी जो माँ ने वो साग का साग तैयार करके खिलाया था उसमें जो स्वाद आया उसके बाद संसार की किसी वस्तु में स्वाद नहीं है। अब उनको उस साग के स्वाद की याद आ रही है और वो अपने शिष्य को बता रहे हैं, विचार तो करो, एक हमारी स्थिति है, कितना संसार में रचे पचे हैं, सारी जिंदगी हमने निकाल दी उसमें, 60-60 वर्ष की आयु हो गई, 70 वर्ष की आयु हो गई, लेकिन राग हमारा संसार से नहीं टूटा। तो बताइए पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, मानव जन्म का जो सिद्धांत है, प्रारब्ध का जो सिद्धांत है, ये सारे सिद्धांत मेरे ऊपर लागू होते हैं, लेकिन मेरा इन सिद्धांतों पर विश्वास तक नहीं होता, पूरा जन्म बीत जाता है। यदि मुझे विश्वास हो कि शरीर मेरा चला जाएगा मैं बच जाऊंगा, तो आपको ये नहीं सोचोगे यदि मैं बच जाऊंगा तो मेरी प्रॉपर्टी कौन सी होगी साथ ले जाऊंगा, नहीं सोचोगे क्या? लेकिन कौन सोचता, कौन सोचता है? सोचता है वही, सोचता है जो ईश्वर के लिए जीता है, जिसका जीवन ही आत्मपरायण है, वो सोचता है मैंने कौन से संस्कार बनाने हैं, कैसा स्वभाव बनाना है। इसीलिए अध्यात्म विद्या आपको सिखाती है कि सारा प्रकृति चक्र है ये तीन प्रकार के स्वभाव के अंतर्गत आता है, सतोगुणी स्वभाव, रजोगुणी स्वभाव और तमोगुणी स्वभाव। सतोगुणी स्वभाव वो है ऐसी बुद्धि जिसका निर्णय हो चुका है कि मैंने ईश्वर प्राप्ति के लिए जीना है, तो वो सतोगुणी बुद्धि है। तो वो जैसा कि वाणी मार्गदर्शन कर रही है, जैसा कि गुरु मार्गदर्शन कर रहा है, इसको इस ज्ञान को बारीकी से सीखता है और इसके अनुसार जैसा कि महाराज जी ने ब्रीफ में कह दिया कि 5 नियम का पालन, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्सिमरन, वो इसको अपनाने के लिए इसके अनुसार जीतता है, जीता है। तो बताइए उसके मनोबुद्धि में क्या चलेगा हर समय, कि मैं कैसे अधिक से अधिक समय ईश्वर भक्ति में लगाऊं ताकि अंतर्यामी ईश्वर का अनुभव मुझे हो जाए, मुझे भी वो आनंद प्राप्त हो जो महाराज जी को प्राप्त था, जो गुरु को प्राप्त। उस आनंद में वो इतने मस्त हो जाते थे कि शरीर का होश ही नहीं है, सारी रात निकल गई शरीर का होश ही नहीं, और मैं सिमरन करने भी बैठ जाऊं तो ईश्वर का होश ही नहीं आता, मुझे संसार का ही होश बना रहता है। ऐसे मेरे संस्कार मन के अंदर तैयार हैं कि मैं सिमरन करने भी बैठ जाऊं तब ये मन मेरा अंदर टिकता नहीं है, बाहर ही भागता रहता है। तो मेरी बुद्धि का जो निर्णय है, उसका जो मनन चिंतन है, वो संसारिक मनन चिंतन है, इसलिए मेरे साथ ऐसा होता है। यदि मैंने गहराई से मनन किया होता, मेरी बुद्धि का निर्णय हो गया होता कि मानव जन्म ईश्वर दर्शन के लिए, ईश्वर अनुभव के लिए मिला है, तो गुरु की इस बात को मैं जरूर मानता और फिर उनके मार्गदर्शन के अनुसार जो है मैं ज्ञान सीखने के लिए इस संता विलास का, इस वाणी का अध्ययन करता, तब मेरी बुद्धि यह समझने लायक जरूर हो जाती जो क्या कहा कि आत्मपरायण होकर नित ही शुद्ध वासना द्वारा शुद्ध कर्तव्य को धारण करना ही श्रेष्ठ आचरण है। तो शुद्ध वासना क्या है, शुद्ध कर्तव्य क्या है, ये वो वे ऑफ लाइफ जो निरंतर आपको ईश्वर की तरफ ले जाए, निरंतर आपके अंदर ईश्वर का महत्व बढ़ता रहे बुद्धि के अंदर, तो ऐसी बुद्धि क्या करेगी, संसार में केवल काम चलाएगी। अरे दो वक्त की रोटी मिल गई है, कपड़ा रहने को मिल गया, रहने को जगह मिल गई, ज्यादा क्या सोचना है इसके लिए, और बाकी पूरा का पूरा जीवन प्रारब्ध के अधीन है, ना कुछ बनना है ना कुछ बिगड़ना है। तो वो निश्चिंत होकर सादा जीवन जीता है। सादे जीवन का आधार क्या होता है, ईश्वर प्रायण, ना कि संसार में मैंने किसी को दिखाना मैं सादा हूं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि यानी एक आत्मा के प्राण होकर के तमाम शारीरिक क्रिया को खेद स्वरूप और क्षण भंगुर जानते हुए, हम तो सुखरूप देखते हैं क्रिया को, वो कह रहे हैं कि इस तमाम शारीरिक क्रिया को खेद स्वरूप और क्षण भंगुर जानते हुए अधिक लोभ, अधिक मोह, अधिक क्रोध, अधिक काम और अधिक अहंकार के वेग को नित पवित्र करने का यत्न करना ही असली मानुषपन है। मैं विकारों को मल्टीप्लाई करता हूं, उनका विकास करता हूं, तो कौन सा परिश्रम है? इनको निरंतर मैंने कम करना होता है। ये सारे विकार कम होते हैं तब जो है आप कहते हैं कि ये असली मानुष बने। और सतवादी जीवन का लक्ष्य है, ये है ट्रुथ बेस्ड लाइफ या ईश्वर परायण जी। ऐसा पवित्र निश्चय और पवित्र निध्यासन ही आत्मचिंतन में निहचल करता है। ऐसा जो पवित्र निश्चय है, दृढ़ विश्वास है ईश्वर का, और पवित्र निध्यासन का मतलब यहां पर जो आपकी सदाचारी मार्ग की कोशिश है, जो एंडेवर है, जो आपका सत्पुरुषार्थ है, कहते हैं ये ही आत्मचिंतन में निश्चल करता है। तो आत्मचिंतन क्या है? अंदर ईश्वर की याद में मन निश्चल हो जाता है, तब आपको प्रभु का आनंद मिलता है, तब पता लगता है कि जीवन की सफलता संसार में सफल होने में है या करतार के मार्ग में चलकर सफल होने में है। तब आप सही रूप में आपके अंदर शुद्ध वासना अर्थात अंदर ईश्वर प्राप्ति की वासना पैदा होती है, उसकी डिजायर पैदा होती है। इसके मुकाबले में संसार की इच्छाएं आपकी लगातार कम होती रहती हैं या बेयर मिनिमम में केवल गुजारा मात्र करते हो, बाकी सारा जन्म आपका ईश्वर प्राप्ति होता है। तब जाके पता चलता है ईश्वर का आनंद क्या है, अमर जीवन क्या है और जीवन की सफलता क्या है। ओम ब्रह्मचर्य सर।